राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी की जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री बालाजी की श्रील प्रभुपाद की समावेत भक्त वृंद की ताय गौर प्रेमानंदी ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम लोग पढ़ रहे हैं आज पांचवें स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक क्रमांक 35वां श्लोक है। नैवं विदः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदंग्रि रजसा जितषड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदादधीत यन्नामधेयमधुना सजहाति बन्धम्। हाँ, शब्दार्थ पढ़िए।
न नहीं एवं विद इस प्रकार पुरुषकार अपना प्रभाव उरुक्रमस्य भगवान का पुमसाम भक्तों का तत् अंग्री उनके चरणारविंद की रजसा धूलि से जित षड्गुणानाम जिन्होंने छह प्रकार के विकारों को जीत लिया है चित्रम विस्मयजनक विदुर विगत अस्पृश्य पंचम वर्ण का व्यक्ति सकृत एक बार
पंचम वर्ण का व्यक्ति मतलब वर्णाश्रम के बाहर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बाद चांडाला म्लेच्छा यवना ऐसे लोग।
आददित यदि उच्चारण करे तो यत जिसका नाम धेयम पवित्र नाम अधुना तुरंत सह वह जहाति त्याग देता है बंधम भौतिक बंधन।
तो इधर दो चीज बताया जा रहे हैं। उर्क्रम कौन है? परम भगवान कृष्ण। अगर उनके पुंसा तद अंग्री, अगर कोई व्यक्ति भगवान के श्री चरण की रजसा धूलि अपने सर पे धारण करता हो, कोई भक्त क्या होता है, जित षट गुणाना, क्या करता है वो अपने काम क्रोध मदलोभ मोह मत्सर्य इत्यादि को जीत लेता है। क्योंकि वैष्णव के 26 गुणों में एक गुण है विजित षट गुण। और भी षट गुण का मतलब है जैसे शोक मोह जरा मृत्यु कृत पिपास, इसको भी जीत लेता है व्यक्ति, है वो भी जीत षट गुणानाम ऐसे बताया है। वो एक चीज है। दूसरा है चित्रम विदुर विगत, विदुर विगत मतलब चंडाल है, वो भी सकृत एक ही बार भगवान का नाम ले लिया अपने जिह्वा में है। आददित अगर नाम लिया तो क्या होता है, सजहाती बंधम, वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो दो चीज है, एक है 6 निम्न गुणों को जीत लेना काम क्रोध मदलोभ मोह मत्सर्य इत्यादि, और दूसरा है सजहाति बंधम, इस भव बंधन से मुक्त हो जाना। तो ये दो चीज बताया गया है इधर भगवान के श्री चरण का धूलि अगर कोई अपने सर के ऊपर धारण करता हो तो प्रियव्रत महाराज जैसे कोई राजा अपने वैराग्य के जीवन को जंगल में गंधमादन पर्वत में छोड़कर अभी राजा का पदवी लिया है, एक खूबसूरत पत्नी मिला है उसको, राज्य मिला है, बहुत धन दौलत मिला है, ऐश्वर्य और मान सम्मान इत्यादि के बीच में रहते समय भी न उलझ जाकर उनके बीच में भी कोई अपने षड गुणों को जीत कर संसार बंधन से मुक्त होकर जैसे एक कमल कीचड़ के बीच में भी एकदम साफ सुथरा रहता है, इस तरह वो रह सकता है क्योंकि ये भगवान का ही एक शक्तिपात है। इतना ही नहीं कि वो बंधन से बच गया, ये 6 निम्न गुणों से बच गया, बस इतना ही नहीं उसके बीच में रहते हुए भी बहुत बड़े बड़े पराक्रमशाली कार्यों को करने के लिए भगवान ने इनको शक्तिपात किया, ये बताया जा रहा है। आगे पढ़िए। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद जी के द्वारा। चलो प्रभुपाद की
जय। हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणारविंदो की धूलि में शरण ली है वह षड्विकारों अर्थात भूख प्यास शोक मोह जरा तथा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत 6 इंद्रियों को जीत सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पृश्य व्यक्ति भी भगवान के नाम का एक बार उच्चार कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से तुरंत छूट जाता है।
अरे एक चंडाल भी जो 4 वर्ग के लोगों से बाहर हो वो भगवान का नाम मात्र लेकर एक ही बार नाम लेकर सकृत शब्द इस्तेमाल किया है तो वो भाव बंधन से मुक्त हो जाता है ऐसे व्यक्ति। तो प्रियव्रत महाराज जैसे कोई वैरागी जो नारद मुनि से प्रशिक्षित इतने सालों से भगवान की भक्ति का अभ्यास किया है, उसको 6 षड वर्ग के गुणों को जीतना क्या मुश्किल बात है क्या? नहीं तो पराक्रमशाली कार्यों को करने में क्या उनके लिए तकलीफ है, वो तो भगवान का शुद्ध भक्त है। ऐसे सुखदेव जी एक कमेंट दे रहे हैं इधर इस अनुवाद में। अभी तात्पर्य पढ़िए प्रभुपाद जी की।
सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से राजा प्रियव्रत के चरित्र का उल्लेख कर रहे थे, और क्योंकि राजा को इन आश्चर्यजनक असाधारण कार्यकलापों के प्रति संदेह हुआ होगा इसलिए उन्होंने यह कहकर उन्हें फिर विश्वास दिलाया कि हे राजन, प्रियव्रत के चरित्र पर संदेह मत करो।
इसलिए इस शब्द इस्तेमाल किया, चित्रम वंडरफुल विस्मयजनक, ऐसे कार्य प्रियव्रत ने किया जैसे आप लोगों ने पूर्व अध्याय में भी सुना है। उन्होंने सूर्य जब उत्तर दिशा में चलता था, दक्षिण में थोड़ा उतना रोशनी नहीं आता था, अंधकार होता था। जैसे प्रभुपाद जी जब लंदन में गए, बोले लंदन इज हेल, बोला प्रभुपाद जी ने। तो उन्होंने पूछा क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं? प्रभुपाद बोला कि अगर सूर्य के किरणें आते ही नहीं है, हमेशा आसमान मंद दिख रहा है, तो वो एक नरक जैसा ही है, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। इस तरह प्रियव्रत ने भी ऐसे ही सोचा कि इधर रोशनी नहीं आ रहा है, इनके लिए रोशनी के लिए और कुछ आयोजन करूंगा करके अपने बहुत बड़े रथ के पहिए, चमकने वाले पहिए के द्वारा उधर रोशनी दिया, जिस स्थान में अंधेरा था। ऐसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट, रोशनी देने का प्रोजेक्ट जो प्रियव्रत ने किया। इतना ही नहीं, सारे दुनिया के लोगों को शासन करने का काम भी अपने हाथ में लिया। मतलब उसको 24 घंटा, शायद आप लोगों ने सुना होगा, भारत के प्रधानमंत्री और उसके भी पहले, जैसे गांधी के समय में गांधी भी 18 घंटा वो जागे रहते थे और गांव-गांव में जाते थे, लोगों को देखते थे। ऐसे तो जो ऐसे पदवी में वो लोग होते हैं, वो लोगों को सोने के लिए 4 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलता है समय, कभी 3 घंटे 4 घंटे मिलता है। तो उनको दिन रात इतना काम काज होता है ऐसे। तो ये राजा जो है, अगर इतने काम काज में पड़ गया राज्य कार्य में, तो अभी पहले जैसे ध्यान भक्ति इत्यादि गंधमादन पर्वत में नहीं कर पाया, फिर भी इतने पराक्रमशाली की चीज कैसे किया उसने? तो बोल रहे हैं कि भगवान का नाम है उरुक्रमा। उरुक्रमा का मतलब जैसे वामन देव होकर उन्होंने 3 पांव में सारे ब्रह्मांड को माप लिया ना, 2 ही पांव में। ऐसे महान भगवान जो खुद भी महान कार्य करते हैं, अपने भक्तों को भी शक्तिपात करते हैं, जैसे वो बड़े कार्य करते हैं अपने भक्तों के द्वारा भी कराते हैं। इसलिए तुम आश्चर्य मत हो जाओ परीक्षित, इस तरह बोलकर सुखदेव जी उनको बता रहे हैं। आगे पढ़िए।
भगवान के भक्त के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ईश्वर को उरुक्रम भी कहा गया है। उरुक्रम वामनदेव का नाम है, जिन्होंने अपने 3 पगों से सारी पृथ्वी नाप कर एक अद्भुत कार्य किया था। उन्होंने महाराज बलि से 3 पग भूमि मांगी, और जब वे ऐसा करने के लिए राजी हो गए, तो उन्होंने संपूर्ण जगत को अपने 2 पगों में नाप लिया और 3रा पग महाराज बलि के सिर पर रख दिया। श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं,
चलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामना पदनक नीरज नित जन पावना केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे।
भगवान केशव की जय हो, जिन्होंने वामन रूप धारण किया। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप भक्तों को अमंगल को हर लेते हैं। हे अद्भुत वामन देव, आपने अपने पगों से महान असुर बलि महाराज को छला। जब आपने अपने चरण कमल भूमंडल में गड़ा दिए, तो उस समय आपके नखों में जो जल लग गया, वह गंगा नदी के रूप में समस्त जीवात्माओं को पवित्र करता है।
क्या क्या चमत्कार करते हैं भगवान! देखिए, उनके पद नख ब्रह्मांड को छेद कर विराजा से अंदर आया हुआ पानी उनके श्री चरण को छू कर उसको धूली को साथ में लेकर इतना पावन बन गई कि वो जब उतर आई ऊपर ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा ने तुरंत कमंडल में पकड़ लिया गंगा का जल, बोला कि इतना भाग्यशाली हूँ, भगवान का श्री चरण दिखाई दे रहा है। अंदर जो पूजा का प्रार्थना ने ले रखा था सामग्रियां, उसको उठा कर लेके आकर तुरंत वो श्री चरण की पूजा करने लगे ब्रह्मा जी। हैं तो ये एक अद्भुत कार्य किया वामन ने। दूसरा क्या किया? चले ऐसी, क्या चले ऐसी है, भगवान का धोखा भी एक तरह का भेंट ही है हमारे लिए। जैसे माँ बाप क्या धोखा दे सकते हैं बच्चे को, जैसे ऐसे धोखा देगी माँ बच्चे को, लॉलीपॉप खिलाएगी साथ साथ दवाई भी खिला देगी, तो दवाई खाने से बच्चे को नुकसान क्या हुआ बताइए? अगर कोई बोलेगा अरे माँ धोखा दे रही है बच्चे को, उनके धोखा में भी भलाई ही है बच्चे के लिए, कुछ नुकसान नहीं है बच्चे के लिए। तो कभी कभी मोबाइल को लेकर बच्चा बात करना चाहता है, लेकिन मोबाइल बच्चों के लिए अच्छा नहीं, उनके मस्तिष्क जो बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनका स्कल जो होता है, उनका सर जो होता है, उतना अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए उनको मोबाइल इस्तेमाल करना अच्छा नहीं। तो माँ क्या करती है, मोबाइल को निकाल कर दूसरा एक जूटा मोबाइल जैसे प्लास्टिक से बनाया हुआ एक डब्बा दे देती है, तो बच्चा उसको उठाकर और मोबाइल करके सोच रहा है माँ धोखा दिया बच्चे को, लेकिन उस धोखा में भी बच्चे के लिए भलाई है। उसमें बच्चे को मारने की काटने की पीटने की ऐसा कुछ उपाय नहीं है, बच्चे की भलाई के लिए। इस तरह से बलि महाराज को भगवान ने बचाया एक स्वामी भाव से, प्रभुत्व से है। और बलि के अंदर जो अहंकार था कि मैं इतने बड़े जमीन का स्वामी हूँ मालिक हूँ, वह अहंकार मिट गया, भगवान की शुद्ध भक्त बन गया। इसलिए भगवान ने बलि को बोला, बलि जो इंद्र का संपत्ति तुमसे अभी छीन लिया मैंने इंद्र को देने के लिए, अभी अगले बार तुमको इंद्र बनाकर उसको वापस लौटा दूंगा। तो इस तरह माँ भी मोबाइल छीन लेती है, अभी बच्चा बड़े होने के बाद मोबाइल वापस दे देती है उसको है? इस तरह। इसलिए हम समझना चाहिए कि भगवान की इधर जो छले ऐसी बताया गया है, वो धोखा भी भगवान का प्रेम का ही एक प्रकटीकरण है। हम जैसे बच्चों के लिए जो शरारती करते हैं, नटखट होते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, हमको सुधारने के लिए भगवान कुछ ऐसे नाटक करते हैं जिसके द्वारा हमारी भलाई ही होता है। आगे पढ़िए।
चूंकि भगवान सर्वशक्तिमान है अतः वे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सामान्य व्यक्ति को अद्भुत लगे। इसी प्रकार से भगवान के चरणारविंद की शरण लेने वाला भक्त चरण रज के प्रभाव से एक अद्भुत कार्य कर सकता है जो सामान्य मनुष्य के लिए अकल्पनीय है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने का उपदेश देते हैं।
देखिए, एक व्यक्ति अद्भुत कार्य कर सकता है भगवान के शरण लेने से। उसके बारे में मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो हम दिखाना चाहता हूँ आपको। ये सिर्फ दो तात्पर्यों से लिया है मैंने। ये बड़ा दिख रहा है, कुछ बड़ा कर दूं उसको। हाँ, बड़ा कर सकते। इसको मैंने टाइटल दिया है एम्पावरमेंट एंड विदड्रॉयल। इसका मतलब भगवान अपने भक्तों को शक्तिपात भी कर सकते हैं और उस शक्ति को वापस भी लौटा ले सकते हैं। तो दो श्लोकों में प्रभुपाद जी सुंदर तात्पर्य देते हैं, हम पढ़ेंगे अभी। एक है 115:5 भागवत के, उसमें एक श्लोक है, सुंदर श्लोक है। अर्जुन बोल रहा है अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को, वंचितोऽहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे अपकृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। वो बोल रहा है कि हे राजन, वंचितो हम, मैं धोखा काया। क्या धोखा काया मैंने? हरिणा बंधु रूपिणा, जो भगवान हरि कृष्ण है, जो मेरे प्राण प्रेमी मित्र है, हमारे बंधु हैं, वो अचानक हम लोगों को छोड़कर चले गए अपने धाम में कुछ बोले बिना। तो मैं अभी द्वारका होकर आ रहा हूँ वापस हस्तिनापुर में, लेकिन सबसे बहुत बड़ा जो आप पूछ रहे हो क्या घटना घटी जिसके कारण मैं रो रहा हूँ, वो बोले कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति छोटा मोटा चीज़ों को खो बैठ सकता है, लेकिन अगर भगवान की सान्निध्यता, भगवान की निकटता और उनकी मैत्री अगर छूट गया तो जीवन में कुछ मतलब ही नहीं है। तो बोल रहे हैं ये न मैं अपकृतम तेजो देव विस्मापनम महत। भगवान कृष्ण ने मुझे ऐसे शक्तिपात की थी, देवता लोग भी विस्मित होते थे। जैसे एक बार देवलोक में जाकर अर्जुन ने शिव जी के साथ एक बार उनका झगड़ा हुआ, किस लिए? ये पाशुपतास्त्र लेके आने के लिए, लेकिन उनको मालूम नहीं था। अर्जुन बैठकर उत्तर भारत में हिमालय में बैठकर अर्जुन तपस्या कर रहा था, उस समय शिव जी दूसरा रूप धारण करके आए। क्या है वो ऐसे रूप धारण करके आए शिव जी, एक शिकारी जैसे। तो अर्जुन ने देखा, एक सुअर को देखा, बड़ा सुअर, उसकी ओर निशान लगाकर उसने एक बाण भेजा, तो वो शिकारी ने भी बाण भेजा। तो शिकारी ने बोला कि मेरे बाण से ये सुअर को मैंने मारा, लेकिन अर्जुन ने बोला मैं मारा उसको। तो दोनों के बीच में एक स्पर्धा हुई, तो दोनों का मल्लयुद्ध हुआ, उसमें अर्जुन जीत गया। अर्जुन जीतने के बाद वो शिकारी ने अपने स्वरूप दिखाया, वो शिव जी थे। शिव जी खुश हो गया अर्जुन से, उसको आशीर्वाद दिया और बोला कि मैं तुमको एक आयुध भेंट में दूंगा, पाशुपतास्त्र दे दिया उसको। इस तरह देवताओं को भी विस्मित किया अर्जुन ने। और एक घटना बताता हूं आपको, जब कांडव प्रस्थ के जंगल में कृष्ण और अर्जुन एक पार्क बेंच में बैठे थे वो लोग, क्योंकि अभी पांडवों को दिया गया था धृतराष्ट्र के द्वारा, तो पांडवों ने सोचा कि इतने बड़े जंगल में जाकर हम शहर कैसे बनाएंगे। तो कृष्ण ने बोला कि कुछ चिंता नहीं, मैं कुछ आयोजन करूंगा। उस समय एक ब्राह्मण आया, तेजस्वी ब्राह्मण, उसके चेहरे चमक रहा था ऐसे। तो जब आ पहुंचा उनके पास, दोनों को देखकर हाथ जोड़कर उसने बोला कि आप दोनों नरनारायण ऋषि हो, अभी कृष्णार्जुन के रूप में आए हो, आपसे एक मदन मंग मांगने के लिए आया हूँ, मैं अग्नि देव हूँ, एक ब्राह्मण के रूप में आया हूँ, ये सारे जंगल को जलाकर इधर जो भी जड़ी बूटी है उसको खाने के लिए मुझे इच्छा है, तो आपकी अनुमति चाहिए। तो वो लोग बोले कुछ चिंता नहीं, हमको भी इसको ठीक करना है, जंगल को मिटाना है, तुम सब अग्नि के द्वारा सब खा लो, उसके बाद हम जो काम करना हम करेंगे। लेकिन वो बोला बहुत बड़ा समस्या है, जब भी मैं इधर आग लगा देता हूँ जंगल में तो इंद्र ऊपर से पानी बरसाता है। तो वो लोगों ने पूछा क्यों, वो बोले कि उसके उसके कोई मित्र हैं इधर, जो तक्षक का परिवार है इधर, तो इसलिए वो पानी बरसा देता है। तो अर्जुन और कृष्ण ने बोला कि तुम चिंता मत करो, हम देख लेंगे उसको, वो पानी बरसा नहीं पाएगा। तो अग्नि चालू होते ही इंद्र का काम चालू हुआ पानी बरसाने का। तो अर्जुन ने एक बहुत बड़ा चक्र बनाया, इतने बड़े विशाल चक्र बनाया उसने, वो चक्र के कारण एक बूंद भी पानी नीचे गिर नहीं पाया। आयुष चक्र बनाया, ये इसमें विस्मित कार्य है कि नहीं ये, इतना बड़ा बाणों से चक्र बनाकर उसको गोल गोल घुमाते रहना ऐसे, इस तरह के चमत्कारकारी विषयों को अर्जुन ने किया। उस समय इंद्र ने देखा, अरे एक भी बूंद पानी नहीं गिर रहा है नीचे, मैं देख रहा हूँ कि पूरा जंगल जल रहा है। उस समय जंगल से अनेक असुर लोग बाहर भाग रहे थे और अर्जुन उनको बाण से मार रहे थे, और कृष्ण और अर्जुन रथ में गोल 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 घूम रहे थे ऐसे कांडप्रस्थ जंगल ऐसे। तो आप देख सकते हैं उस समय इंद्र ने सब देवताओं को लेके आया अपने साथ युद्ध करने के लिए अर्जुन और कृष्ण के साथ। ये आ गए, स्कंद आ गए अपने भाला लेकर, वरुण आ गए अपने उन रस्सी लेकर, सब लोग आ गए अपने अपने आयुध लेकर आ गए युद्ध करने के। आप पूछेंगे पूछ देवता लोग कृष्ण के साथ युद्ध कर रहे हैं क्या, ये क्या मतलब है? ये भी लीला है। क्यों लीला है? अर्जुन की शक्ति को दिखाने के लिए भगवान प्रेरणा देते हैं देवताओं को, आप लोग आ जाओ लड़ाई करो और अर्जुन आपको पराजित करेगा, सब भाग जाओ। ऐसे भगवान का ही आयोजन है ऐसे। इस तरह अर्जुन चक्र भी बनाया जिसे पानी का बूंद नहीं आ पाया, साथ साथ देवताओं को भी युद्ध करके भगा दिया अर्जुन ने, वापस ऐसे कर दिया। उसके बाद एक माया दानव अंदर से जो निकला बाहर, वो बहुत बड़ा महल बनाकर शहर बनाकर दिया इंद्रप्रस्थ नाम से। तो इसलिए वो बोल रहा है कि इस तरह देव विस्मापन महत, देवता लोग भी विस्मित हो गए मेरे शक्ति को देखकर, ऐसे अर्जुन बोल रहा है। लेकिन अभी अपहृतम तेजो, भगवान ने शक्तिपात किया, अभी शक्ति को वापिस लौटा ले लिया, ऐसे बोल रहा है। तो इधर बता रहा है कि भगवान छोड़कर चले गए। तो मैं इसको तात्पर्य से पॉइंट वाइज मैंने निकाला है, एक एक पॉइंट आपके पास वो तात्पर्य है। 115:5 आप थोड़ा पढ़ेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा उसको। मैं इंग्लिश में दिखाऊंगा इधर उधर, आप हिंदी में। 115:5 मिल गया, ये पहला स्कंद 15वां अध्याय 5वां श्लोक। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। हे अर्जुन, ये दुनिया में जिधर भी कोई चमक दमक रहा है, इस दुनिया में कोई अच्छा गा रहा हो, कोई नाच रहा है, कोई अच्छा बोल पा रहा है, कोई कुछ विस्मय करने वाली कार्य कर रहा है इस दुनिया में, समझ लो कि वो मेरे ही ऐश्वर्य का एक अंश मात्र है, भगवान बताते हैं। इस दुनिया में षड ऐश्वर्य है ना, कोई खूबसूरत है, कोई धनी है, कोई बलवान है, बुद्धिमान है, कोई कोई वह जिसके अंदर वैराग्य है कि नहीं। तो ये सब भगवान बोल रहे हैं कि किसी के पास यश है, बहुत यशस्वी है। तो आप देखेंगे कि हर एक जीव के पास इस तरह के ऐश्वर्य जो है वो एक छोटा लेश मात्र है, भगवान बोल रहे हैं। मैंने ही उसको दिया है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। इसलिए भगवान वो ऐश्वर्य दिए बिना, क्योंकि अब भगवान ऐश्वर्यों के भंडार हैं, अगर वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं वो भगवान। अगर वो देते हैं तब जीव थोड़ा ड्रामा करता है वो ऐश्वर्य को लेकर, देखो मैं कितना यशस्वी हूँ, कितना खूबसूरत हूँ, ऐसे कुछ समय के लिए वो ड्रामा करके निकल जाएगा। जैसे जुगनू होता है रात के समय, वो जुगनू अंधेरा में ही चमक सकता है वो। इस तरह ये दुनिया तो अंधेरा रूपी, अंधकार रूपी अज्ञानता है दुनिया में। अज्ञानता की दुनिया में अगर कोई किसी के पास छोटा भी ऐश्वर्य हो, लोग उसके पीछे पड़ते हैं, उसके फैन बन जाते हैं, पागल बन जाते हैं ना उसके ऐसे। लेकिन भगवान बता रहे हैं इधर कि मैं ही दिया है उसको अंश मात्र में, और वो अपने आप में वो सक्षम नहीं है इस तरह के ऐश्वर्य प्रकट करने के लिए। वो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पढ़िए आगे। When Lord descends to earth along with this, I have the same, taken the same purport and elaborated.
जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं।
हाँ, अभी दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बताते हैं प्रभुपाद जी, सब जीवों के पास जो भी ऐश्वर्य लेश मात्र में है वो ऐश्वर्य देने वाले भगवान है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं वो ही भगवान अपने भक्तों को भी ऐसे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। लेकिन किस लिए बोल रहे हैं कि भगवान जब इस दुनिया में आते हैं खुद भी अपने ऐश्वर्यों का प्रकटीकरण करते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत को धारण किया, दावानल को पी लिया अपने मुंह से, कालिया के ऊपर नर्तन किया, भगवान ने विश्वरूप दर्शन का प्रदर्शन किया, मुख खोलकर मृद भक्षण लीला में माँ यशोदा को अपने पेट के अंदर सारे ब्रह्मांड को दिखाया भगवान ने। ये भगवान ने अपने ऐश्वर्य को भी दिखाया, साथ साथ अपने भक्तों को भी शक्तिपात करते हैं। जैसे अर्जुन, जैसे मैंने आपको बताया कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन के अंदर अचानक इस तरह का शक्ति आ गया, ऐसे ये बताएगा। आप पढ़ेंगे एक श्लोक है, परीक्षित बोलता है पितामहामे समरम जयैर, वो बताता है उस श्लोक में कि कौरव सैन्य सागरम, ये कौरव सेना एक बड़े सागर के समान था, और उसमें भीष्म द्रोण कर्ण ये कृपाचार्य ये सब लोग एक एक थिमिंगल के बराबर थे। लेकिन अर्जुन को ऐसे शक्तिपात किया था भगवान ने, उनको भी मार पाए अर्जुन, उनको भी जीत सके। ये लोगों को किसी ने जीता नहीं है उनके जीवन में, तो अर्जुन ने जीत लिया उनको, क्योंकि भगवान ने उनको शक्तिपात किया। तो पहला प्रपंच बताते हैं कि साधारण जीवों को भी शक्तिपात किया जाता है अंश मात्र में, उनके पास जो भी ऐश्वर्य हो भगवान का ही असीमित ऐश्वर्य का एक लेश मात्र है पहला। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं भक्तों को भी भगवान शक्तिपात करते हैं, लेकिन फर्क क्या है, भक्त लोग उस ऐश्वर्य को लेकर भगवान की सेवा में लगाते हैं, और जनता साधारण जनता के पास अगर ऐश्वर्य हो वो सिनेमा एक्टर बनेगा, कोई बहुत धनी बनकर पैसा डालेगा वो स्विस बैंक में, भगवान का काम नहीं करेगा वो साधारण व्यक्ति। लेकिन भक्तों को दिया जाता है ऐश्वर्य तो भक्त भगवान की सेवा में लगाता है उसको। आगे
भगवद गीता में भी कहा गया है कि भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहाँ भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं वही पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं।
अर्जुन ने पूछा कृष्ण को, हे कृष्ण अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादो प्रोक्तवान इति, ऐसे मैं कैसे जानूं कृष्ण कि आपने सूर्य देव को ये दिव्य ज्ञान भगवद गीता का दिया करोड़ों साल के पहले, आप तो मेरे साथ जन्म है, उनको कैसे दिया आपने ज्ञान, मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे, थोड़ा समझाइए मुझे। तब कृष्ण बताते हैं भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेत्तः परंतप। भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, मैं और तुम दोनों इस दुनिया में अनेक बार अवतरित हुए हैं, जैसे हम दोनों बने नर नारायण ऋषि, है ना, अभी आए हैं कृष्ण अर्जुन के रूप में। ऐसे अनेक बार हम लोग इस दुनिया में बार बार आते हैं, लेकिन मुझे वो सब अवतार में आया जो भी आया था मैं अभी तक याद है मुझे, मैं कभी भूलता नहीं। जैसे मैंने मेरी माँ देवकी और पिता वसुदेव को बता दिया ना, पहले मैं प्रश्नी सुतपा के बेटे प्रश्न गरबा बनकर आया, उसके बाद आदित्य कश्यप का बेटे की बनकर बेटे बनकर मैं आया था, अभी वसुदेव और देवकी के पुत्र बनकर आया हूँ, तीनों जन्म का याद दिला दिया उनको, है कि नहीं है? मैं सब याद रखता हूँ, मेरे पास अकाउंट है। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूँ, भगवान ने बोला, और तुम जीव हो, तुम भूल जाते हो, क्योंकि तुम शरीर बदलते समय भूलते हो। मैं शरीर बदलता नहीं, मेरा शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, इसलिए मैं कभी बदलता मैं कभी भूलता नहीं, और जीव बलकड़ होता है। तो भगवान ने बता दिया कि मेरे भक्त लोग साथ में आते हैं मेरे साथ पार्षद के रूप में, मैं भी अपने शक्ति को प्रकट करता हूँ, भक्तों को भी शक्ति देता हूँ कुछ चमत्कार करने के लिए, लेकिन भक्त लोगों को और मेरे और भक्तों के बीच में क्या फर्क है? भक्त लोग भूल जाते हैं पूर्व जन्मों के संबंध में, लेकिन मैं याद रखता हूँ, भगवान बताते हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कि भक्तों का भी शक्ति देने वाले भगवान ही हैं, और हम लोग भूल भी जाते हैं लेकिन भगवान भूलते नहीं है। आगे बढ़िए।
इस प्रकार जब भगवान इस धरा से अंतर्धान होते हैं तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं।
हाँ, अभी भगवान आया यदुओं के साथ, क्या क्या यदु लोग कर पाए, अगर आप पढ़ेंगे भागवत में सुनेंगे, वो लोग यदुओं की राज्य जब चालू हुआ वो गए स्वर्गलोकों में, स्वर्गलोकों में देवता का एक बिल्डिंग था, उसका नाम था सुधर्मा करके, एक देवता लोग मिलते थे आकर उधर उनके मीटिंग के लिए। ये लोग उस बड़े इमारत को ही लाया इधर भूमि में, ऊपर से नीचे स्वर्गलोक से इधर लेके आकर उसको खड़ा कर दिया इधर द्वारका में, द्वारका का पार्लियामेंट हो गया वो सुधर्मा असेंबली, और वो ऐसे इमारत था, वो अंदर जाकर कोई मीटिंग लेगा, अगर उधर 5 साल का मीटिंग होता है 5 साल आपका आयु बढ़ेगा ही नहीं, ऐसे ही रहेगा आपका आयु। आपका उधर अंदर गया कोई तो हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, तरुण रहेगा वो। इतना ही नहीं, उसको व्याधि नहीं होगा, उसको प्यास नहीं, भूख नहीं, ऐसे होगा। ऐसे एक पार्लियामेंट हाउस था वो, तो ये लोगों ने ऊपर से नीचे लाया उसको द्वारका में। ऐसे आप देख सकते हैं यदुओं का क्या शक्ति है। तो इस तरह यदु लोगों के अंदर इतना शक्ति कैसे प्राप्त हुई? उस समय कृष्ण के जमाने में यदु जैसे डायनास्टी जो वंश कोई नहीं था, सारे चंद्रवंश के ये लोग जो थे ये इतने शक्तिशाली थे। तो लेकिन भगवान जब अपने धाम लौट गए, यदुओं के बीच में एक मौसल लीला किया भगवान ने करके, वो सबको लेके गए साथ में ऐसे। इसी तरह ब्रजवासियों को भी भगवान ने सोचा छोड़कर नहीं जाना चाहिए, तो ब्रजवासियों को वह अपने गोलोक धाम में लेके गए भगवान इस तरह। तो ब्रजवासियों को भी लेके गए, यदुओं को भी लेके गए भगवान ऐसे। जैसे एक सर्कस ट्रूप आता है एक शहर में, आकर टेंट लगाते हैं 20-25 दिन कुछ सर्कस करते हैं, उसके बाद सब वाइंड अप करके दूसरे शहर में चले जाते हैं। इस तरह भगवान भी अपने पार्षदों के साथ आते हैं, उन खुद भी शक्ति का प्रकट करते हैं, उनको भी शक्ति प्राप्त करते हैं, और उनके लीलाएं सब होने के बाद उसको रिकॉर्ड हो जाता है पुराणों में, इतिहासों में। उसके बाद भगवान दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं, नहीं तो अपने धाम लौट जाते हैं। तो ये भक्तों को ये भूलना नहीं चाहिए, हाँ भक्त लोग हम आते हैं भगवान के साथ, कुछ शक्तिपात करते हैं भगवान, हम लोग उसका प्रकटीकरण करते हैं, तो भगवान जब बुलाएंगे सब पार्षदों को सब वाइंड अप करके जाना पड़ेगा। जैसे प्रभु रामचंद्र जब आए थे, आप लोग जानते होंगे, उधर देवलोक से अनेक देवता लोग आकर उसमें भाग लिया भगवान भगवान रामचंद्र की लीला में। इस तरह आप देखेंगे भगवान जब आते हैं उनके साथ आने वाले अनेक होते हैं। जैसे हमारा अनुभव है पुणे में, जब भारत के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी आए थे, वो लोग अकेले नहीं आते हैं, उनके अनेक पॉलिटिकल पार्षदों को लेके आते हैं। तो पुणे में 400 से भी ज्यादा पॉलिटिकल लोग बुलाए बिना आ गए लोग, वो लोग पूरे हमारे हाल के जो सीट हमने बना रखा था वो पूरा ऑक्यूपाई कर लिया वो लोगों ने, वो लोग आकर बैठ गए, और वह जब वो निकल गए सब निकल गए। इस तरह जब प्रधानमंत्री आता है, प्रेसिडेंट आते हैं, वो हेलीकॉप्टर में आते हैं, खुद के हेलीकॉप्टर होता है उनका, जब आते हैं अनेक लोग साथ में आते हैं। इसी तरह भगवान भी आते हैं, लीलाएं करते हैं और अपने धाम निकल जाते हैं। पढ़िए आगे।
भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वह भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी।
ठीक है, भगवान ने अर्जुन को शक्ति दिया तो धर्म की स्थापन करना था, कर देने के बाद भगवान ने सोचा कि इसके पास सभी शक्ति रहेगा, यही शक्ति इसको नुकसान कर सकता है, तो इसलिए उनको उस शक्ति को ले लिया उन्होंने। एक बार इंद्र ने देखा एक ऋषि जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे थे, बड़े ही तपस्वी थे, तो इंद्र डर गया, सोचा कि ये तपस्वी का तपोबल बढ़ जाएगा तो मेरा सीट का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी ये इंद्र बन जाएगा मुझे भगा देगा। इस तरह सोचकर उन्होंने क्या किया, उनके पास जाकर एक तलवार दे दिया, बोला कि ऋषि ये तलवार को आप संभाल कर रखो, 6 महीने के बाद मैं आकर लूंगा। लेकिन जब तलवार आ गया, ऋषि तो सत्वगुणी प्रधान थे, तपस्या करने का, बहुत सरल भोजन खाने का, इस तरह के जीवन जी रहे थे, लेकिन ये तलवार आने के बाद उन्होंने सोचा कि आया है तलवार हाथ में, इसको खाली क्यों रखने का, तो धीरे धीरे वो तलवार का दुष्प्रयोग करके जानवरों को पकड़ना, काटना, पंछियों को पकड़ना, इस तरह करके दूषित हो गए वो, उनके तपोबल सब मिट गया इसे। ये सीता माता बोलती है रामायण में, कहानी में बोलती है प्रभु रामचंद्र को, वो बोलती है कि आप हमेशा धनुष बाण मत रखो, क्योंकि धनुष बाण रहेगा आपके हाथ में तो किसी को मारने की थोड़ा कुजली होता है हाथ में, ऐसे बोलती है वो। तो रामचंद्र उसको बोलते हैं, देखो मैं क्षत्रिय हूँ इसलिए इसको धारण करना हमारा धर्म है, और हम धर्म के लिए इसकी इस्तेमाल करेंगे, दुष्प्रयोग में नहीं करूंगा, ऐसे भगवान उनको बताते हैं। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, हाथ में कुछ है तो हमारे हाथ उस आयुध को इस्तेमाल करके बिगड़ सकता है किसी व्यक्ति, है ना। इसी तरह अर्जुन के पास अगर शक्ति होगा उसका दुष्प्रयोग करके अधोगति हो सकता है उसको, है ना। इसलिए भगवान ने क्या किया, उस शक्तिपात जो किया था पहले उसको ले लिया, भगवान ने विड्रॉ कर लिया इसे। बढ़िया, आगे।
वे उनके भगवद्दान वापस जाने के निमित्त नहीं थी। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो उन शूद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है।
तो 3 लेवल के लोग बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, शुद्ध भक्त, देवता लोग, साधारण जीव। ये साधारण जीव को भी भगवान कुछ शक्तियां देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, देवताओं को भी ऐश्वर्य देते हैं, नहीं तो देवता लोग कैसे संभल पाएंगे इतने बड़े ब्रह्मांड को। और शुद्ध भक्तों को भी शक्तिपात करते हैं, अगर शुद्ध भक्तों को भी शक्ति देकर भगवान उसको छीन लेते हैं, वापस ले लेते हैं, तो देवता और साधारण जीवों के बारे में बोलना क्या, ऐसे बोल रहे हैं। तो वो सिर्फ जुगनू जैसे हैं, कुछ समय के लिए नाटक करके निकल जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है ना, ये जो एक खिलौना होता है उसमें की चाबी देना होता है उसको, चिर 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 कैसे, आप चाबी देने के बाद वो ऐसे बजाना, वो बजाता है टम 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 टम, ऐसे रहता हुआ ऐसे, क्योंकि अभी क्या हो गया, चाबी खत्म हो गया। तो भगवान जब तक चाबी देते हैं जीवों को, वो थोड़ा नाटक करेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे ऐसे ही है? तो वही बताया जा रहा है इधर। तो साधारण जीव देवता का बात क्या है, बड़े बड़े शुद्ध भक्तों को भी भगवान शक्ति देते हैं, ले लेते हैं, तो ये लोगों को पूछने की क्या है? पूछ रहे हैं, पढ़िए।
अतएव इससे शिक्षा यह मिलती है कि भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु तो विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं, अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग है यह है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए।
बहुत अच्छे चीज प्रभुपाद जी बताते हैं। हम गर्व नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये शक्ति है, है? क्योंकि अगर कोई खूबसूरत है, कोई एक्टर था बहुत खूबसूरत था, अभी वो आत्महत्या किया कुछ समय के पहले है, तो कुछ लोग खूबसूरत हैं, कोई धनी है, कोई बड़े यशस्वी हैं, कोई बलशाली है, लेकिन गर्व चढ़ जाता है। एक था एक बॉक्सर,
वो बोला कि इस दुनिया में कोई नहीं है मुझे जीतने वाले, मैं एकमात्र चैंपियन हूँ। जब उसने इसको घोषणा किया तब वो हार गया वो। इस तरह इसी तरह वैज्ञानिक लोगों ने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया टाइटैनिक नाम के, और उसमें बोर्ड भी लग गया द शिप विच इवन गॉड कैनॉट सिंक, ऐसे लोगों ने घोषणा किया। ये ऐसे जहाज है जिसको भगवान भी डुबा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना हमने मजबूत बनाया है इसको। तो उसमें 1800 बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस पॉलिटिशियन सब लोगों ने सोचा कि इसके पहले वॉयज में पहली बार सफर होने वाला है, हम जाएंगे तो हमारा नाम रिकॉर्ड में आ जाएगा, सारे दुनिया के लोग देखेंगे कौन कौन गए इसमें वीआईपी, सब लोग गए। लेकिन वो लोगों ने बोला कि भगवान भी उसको डुबा नहीं सकते हैं, एक बहुत बड़ा ग्लेशियर था दिख नहीं रहा था, वो निकट जाने के बाद ही पता चला वो टुकड़ा गया, वो जहाज पूरा जहाज डूबने लगा पानी के अंदर, अनेक लोग मर गए कुछ लोग बच गए। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, इस दुनिया में हमें गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे पास इस तरह का शक्ति है, हमने ये किया है वो किया है, मालूम होना चाहिए कि भगवान से ही हमको शक्ति प्राप्त हुआ है। और दूसरा चीज है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक बार स्टेज में हमने देखा कुछ स्कूल की लड़कियां एक पीकॉक डांस ऐसे बोला उन्होंने, तो हमने देखा वो क्या क्या है, वो जो मोर के अनेक पंखों को लेकर ऐसे अपने आप को सजाया है, सजा कर नाच रही है, इसको बोलते हैं बारोड प्लूम्स बोलते हैं, वो खुद मोर नहीं है, मोर जैसे अपने मोर से पंखा लेकर वो नाच रही है ऐसे उसको पहनकर। इसी तरह जीव भी भगवान से ही लिया है शक्ति, अगर उसको भूल जाते हैं तो अहंकार चढ़ जाता है, तो ये याद रखना चाहिए कि भगवान से लिया है हमने। वो दूसरा चीज बोलते हैं प्रभुपाद जी, हमें कृतज्ञ होना चाहिए भगवान को, हर बार हम भगवान के सामने जाते हैं सर झुकना चाहिए, भगवान आपकी कृपा से मैं भक्त बन पाया, आपकी कृपा से श्लोक याद कर रहा हूँ, आपकी कृपा से माला कर पा रहा हूँ, आपकी कृपा से माया से बच कर रह पा रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ ये आपके ही शक्तिपात है, इस तरह कृतज्ञता होनी चाहिए। और प्रभुपाद जी बोलते हैं इतना ही नहीं कृतज्ञ होकर रखना, लेकिन उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए इस दुनिया में अगर किसी के पास वाक शक्ति है उस वाक शक्ति से भगवान की गुणगान करना चाहिए, इसके बदले अगर कोई इस दुनिया में अनेक लोग टेड टॉक्स इत्यादि देते हैं, टेड टॉक्स में अनेक विषयों के बारे में बोलते हैं, पैसा कैसे बनाना उसके बारे में बोलते हैं, शरीर को तंदुरुस्त कैसे रखना बोलते हैं, तो इस तरह से हमारे वाक शक्ति को भगवत संबंधित विषयों को ना बोलकर दूसरी चीजों को बोलने के लिए व्यर्थ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और बताते हैं कि ऐसे शक्ति जो मिला है कभी भी भगवान उसको वापस लौटा ले सकते हैं, इसलिए जब तक है हमारे पास भगवान के सेवा में लगाओ। और एक श्लोक है, ये श्लोक है 3929, टेक 3929, ये भी सुंदर श्लोक, भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी को 3929।
श्री भगवान उवाच मा वेद गर्भगास्तंद्रीं सर्ग उद्यम आवह तन्मया पादितं ह्यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान।
भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा आप तो दिव्य ज्ञान है, ब्रह्मा के पास बोल रहे हैं, पढ़िए।
तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए न तो निराश हो न ही चिंतित, तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दे दिया जा चुका है।
भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्मा तुमको मालूम नहीं, जब मैं आदेश देता हूँ किसी को उस आदेश के साथ साथ शक्तिपात भी कर देता हूँ, जैसे एम्पावरमेंट कम्स अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शन ऐसे बोलते हैं हम, गुरु अगर आदेश देते हैं आपको आपको सेवा करने के लिए व्यवस्था भी कर देते हैं आपके लिए, अगर कुछ सेवा देते हैं तो। इस तरह भगवान भी बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत हो जाओ ब्रह्मा, आप पूछ रहे हो कि ये विसर्ग दूसरा सृष्टि कैसे होगा मेरे हाथ से, आप चिंता मत करो, मैंने आदेश दिया आपको, सामग्रियां भी मैं दूंगा और उपाय भी दूंगा, मैं आपको एक ही करना है, मैं जो बोलता हूँ उसको सही ढंग से निभाना है। अभी तात्पर्य एकदम सुंदर तात्पर्य पढ़िए। रीड दैट एनी पर्सन।
भगवान या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा अधिकार प्रदत्त कोई पुरुष पहले ही आशीर्वाद पा चुकता है और उसी तरह उसे सौंपा हुआ कार्य भी। निस्संदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया है सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्ण संपादन।
नहीं, पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, जितना वो व्यक्ति को आशीर्वाद मिला है उसके प्रोजेक्ट के लिए भी उतना ही आशीर्वाद है। ये पॉइंट बोलते हैं प्रभुपाद जी। एनी पर्सन ऑथराइज्ड वेदर बाय द लॉर्ड और हिज बेनिफिट रिप्रेजेंटेटिव इज ऑलरेडी ब्लेस्ड एज इज द वर्क एंट्रस्टेड टू हिम। दो चीज है, जिस व्यक्ति को जैसे अर्जुन का अर्जुन को काम दिया था भगवान ने कि तुमको युद्ध करना है, अर्जुन को जितना आशीर्वाद मिला था उतना ही उसके काम जो है युद्ध करने का काम वो भी दिव्य माना गया है। वो पाप नहीं है, वो इतने अधार्मिक लोगों को मार रहा है। भगवान बोलते हैं कि हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि हैं, इसलिए उसके प्रोजेक्ट जो कर रहा है अर्जुन वो भी भगवान से आशीर्वाद प्राप्त है। अर्जुन भी आशीर्वाद प्राप्त है, उसके प्रोजेक्ट भी आशीर्वाद प्राप्त है। इसी तरह ब्रह्मा को बोला भगवान ने, आप जो सृष्टि कर रहे हो, जीवों को शरीर प्रदान कर रहे हो, उनके लिए सुख सुविधा बना रहे हो, रोटी कपड़ा मकान के लिए सब इस दुनिया में व्यवस्था कर रहे हो, वो सब प्रोजेक्ट जो है वो भी आशीर्वाद प्राप्त है और तुमको भी आशीर्वाद प्राप्त है, तुम भी। आगे।
निस्संदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया है हो सदैव अपनी अक्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य के सफलतापूर्ण संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए अपेक्षा करनी चाहिए।
हाँ, ये ब्रह्मा के पास एक अच्छा गुण था। वो उन्होंने सोचा कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं क्षुद्र जीव हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगा ये काम अपने आप मेरे बलबूते पर, लेकिन हे भगवान आपकी कृपा की राह देख रहा हूँ। इस तरह की भावना था ब्रह्मा के पास। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति को कभी भी गर्वित नहीं हो जाना चाहिए कि मुझे ये पदवी दिया गया है, हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, नहीं तो हमने ये किया है, मैं ही ये चीज पहले किया, मैंने, मेरे जैसे कोई नहीं कर सकता, मेरे बिना कोई नहीं कर सकता। इस तरह कुछ लोग अहंकारी होकर सोचते हैं, वो अहंकार के वश में नहीं आना चाहिए जीव को। तो भगवान जीव को अपने आप को सोचना चाहिए कि मेरे लिए नामुमकिन है, इसलिए मैं भगवान की कृपा को ढूंढना चाहिए, साथ साथ काम करने के बाद भी गर्वित नहीं होना चाहिए। आगे। भाग्यशाली कौन है? फॉर्चुनेट इज ही।
वह भाग्यशाली है जिसे ऐसा कार्य सौंपा गया है और यदि वह इस भाव में सदैव स्थिर रहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अधीन हूँ तो अपने कार्य के संपादन में उसका सफल होना सुनिश्चित है।
हाँ, बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, उसको उसके सेवा भगवान के दिए हुए सेवा करते समय भगवान के अधीनता में रहना चाहिए, तभी उसको विजय प्राप्त हो सकता है। देखिए अर्जुन के पास दो गुण थे, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, तो भगवान के शिष्य बने वो, तो भगवान को गुरु के रूप में अपना लिया, वो ये एक अच्छा गुण है। दूसरा है, कुछ लोग शिष्य तो बनते हैं लेकिन बनने के बाद मनमानी करते हैं, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, करिष्ये वचनम तावा, तो पहले बना शिष्य भगवान के, बाद में बोला भगवान को आपकी इच्छा को पूर्ति करूंगा। ये हर धर्म में इसके बारे में है। मुसलमान लोग बोलते हैं इंशा अल्लाह, अल्लाह की इच्छा पूर्ति हो। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ओ लॉर्ड दाई विल बी डन, हे भगवान आपकी इच्छा पूरा हो। तो अर्जुन बोलता है करिष्ये वचनम तावा, वही बात है। तो हमें भगवान के अधीनता में भी रहना चाहिए, साथ साथ उनकी इच्छा को भी पूर्ति करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इधर अर्जुन का ही उदाहरण दे रहे हैं जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने चर्चा की थी, वही बता रहे हैं। और ब्रह्मा का भी उदाहरण दे रहे हैं, हमारे गुरु शिष्य परंपरा में सब लोग इसी इन विधि जो अभी हमने बोला उसको ही फॉलो करते हैं, ऐसे बताते हैं प्रभुपाद जी। अभी वापिस हम तात्पर्य में जाते हैं। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय।
हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका चिरंतन दास हूँ, फिर भी मैं न जाने किस तरह इस जन्म मरण के सागर में गिर गया हूँ, कृपया मुझे इस सागर से उठाकर अपने चरण कमल की धूलि कण बना ले। भगवान चैतन्य हमें भगवान के चरण कमलों की धूलि के संपर्क में आने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि तब हमें निसंदेह सभी प्रकार की सफलता मिल जाएगी।
करेक्ट। तो इस तरह महाप्रभु सिखाते हैं कि भगवान की धूलि को सर के ऊपर धारण करो। मतलब क्या है? भगवान को अपना स्वामी मानो, भक्तों को अपने स्वामी मानो, उनकी आधीनता में रखो, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करो। यही सफलता का मार्ग है। अभी आगे जाकर इस तात्पर्य, बड़ा तात्पर्य है ये, इधर जो बताया जाने वाली एक ही चीज। आगे जाकर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चंडाल जैसे परिवार में अगर किसी का जन्म हुआ हो, हा? लेकिन अगर वो चंडाल भी भगवान का नाम लेता है, वो ब्राह्मण बन जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भारत में कभी कभी कुछ ब्राह्मण लोग वाद विवाद करते हैं कि आप लोग अमेरिकी लोगों को दीक्षा दे दिया आपने, ठीक है, वो लोग हरिनाम ले सकते हैं, अभी शुद्ध होकर अगले जन्म में उनको ब्राह्मण का शरीर मिलेगा, ऐसे वो लोग बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं, अभी मिल गया उनको ब्राह्मण का शरीर, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो इधर उसके बारे में ही प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं इधर, और उदाहरण देते हैं सनातन गोस्वामी के श्लोक, यथा कांचनताम जाति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम। पढ़िए उसके नीचे।
जब कोई व्यक्ति भले ही वह चांडाल ही क्यों न हो, शुद्ध भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की दीक्षा पाता है, तो उसका शरीर बदल जाता है, क्योंकि वह अपने गुरु के उपदेशों का पालन करता है। यद्यपि कोई यह नहीं देख पाता कि शरीर किस प्रकार बदला है, किंतु हमें शास्त्रों के वचनों को प्रामाणिक मानकर ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए।
तो उदाहरण देते हैं, एक लोहा को एक रसायन में आप डालोगे तो सोना बन जाता है वो। इसी तरह एक चंडाल को हरे कृष्ण महामंत्र के रसायन में डालो, वो वैष्णव बन जाता है। इस तरह उसमें परिवर्तन आ जाता है। कैसे आपको मालूम है? सजहाति बंधम, वो भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। चार नियम पालन करता है ना, मांस नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग नहीं, नशा नहीं, और हरिनाम लेता है, सुबह जल्दी उठता है, भगवान की पूजा आराधना करता है। वो शूद्र के समान, चंडाल के समान जीवन नहीं जीता है, शराब नहीं पीता है, सिगरेट नहीं फूंकता है, शुद्ध जीवन, सरल जीवन, ऊंचा विचार, इस तरह वो जीता है। तो वही बोल रहे हैं इधर, उसके उसके स्थूल शरीर में इतने परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो गया, उसका हरिनाम कर करके उसके चित्त शुद्ध हो गया। तो प्रभा जी बोलते हैं कि अगर ये एक लोहा को आग में डालो, वो तप जाता है, वो लोहा के बराबर काम नहीं करता, वो क्या करता है, एक कागज को, कापूस को जला देता है वो, है? इस तरह एक चंडाल को भी हरिनाम प्राप्त हो गया, जैसे मृगारी में इतना बड़ा परिवर्तन आया था, वाल्य गौड़ा बना, वाल्मीकि बना, तो इसी तरह हिप्पी लोग हैप्पी बने हैं, इस तरह उनमें परिवर्तन आ जाता है। वो ब्राह्मण जी से ही उसका शरीर काम करता है, क्योंकि उसके चित्त में मल नहीं है। तो ये स्थूल शरीर की परिवर्तन तो हर एक को होता है, बचपन से युवक, युवक से बुढ़ापा आकर मर जाता है स्थूल शरीर, लेकिन सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन लाना ही मुश्किल काम है। और वो सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन लाता है हरिनाम, है? और हरिनाम करके जो चित्त को शुद्ध कर दिया, उसको हमें ब्राह्मण मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि चित्त शुद्ध होने के कारण उसके स्थूल शरीर भी ब्राह्मण जैसे ही काम करता है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो ये भगवान का चमत्कार है हरिनाम के द्वारा। तो वही बाकी के तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो आज के सत्र में खास करके हम शक्तिपात क्या है और शक्ति अपहरण क्या है, और ये दोनों होता है, साधारण जीवों को भी होता है, भक्तों को भी होता है, हमने देखा। और शक्तिपात को हमें कैसे स्वीकारना चाहिए, किस भावना में, तो वो प्रभुपाद जी ने सिखाया हमको। तो प्रियव्रत राजा ऐसे ही सही चेतना के साथ उन्होंने भगवान की शक्तिपात को लेकर अच्छे अच्छे कार्य किया, सब महाजनों के आशीर्वाद प्राप्त हुआ, अपने जीवन में यशस्वी बनकर वो भगवत धाम लौटा प्रियव्रत महाराज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंदा की, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।